Hare Rama, Hare 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेम मंदिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मौदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ्यम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगणललिता श्रीविशाखाम्बितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धोः दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भजो श्रीराधा मदन मोहन दिव्यं वृंदारण्यकल्पद्रुमाद्य श्रीमदरत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमदराधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालिधि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंगी वंशिवटतटस्थितः कर्षण वेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रिये सुन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्रीमद् भागवतम नित्य क्रम अनुसार दसम स्कंद अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 36 किं क्षेमा सुरे विबुधे असंगयुग विकल्पे विकथने रहो जुसा किं हरिणा शंभुना वा वनौकसा किमिन्द्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता किं क्षेमशुरे विबुधे संयुग विकथने रहो जुसा किं हरिणा शंभुना वा वनौकसा किमिन्द्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता माता है धन्यवाद। धन्यवाद। किस बात का भय? क्षमा। ऐसे स्थान में जहाँ लड़ने की क्षमता का अभाव है, सुरे देवताओं द्वारा विबुधे, ऐसे शक्तिशाली पुरुषों द्वारा असंयुग विकथने वृथा डिग मारने से लड़ने से दूर रहने रह जुषा हृदय के कोने में रहने वाला किम हरिणा भगवान विष्णु से क्या डरना शंभुना शिव से वा अथवा वनौकसा वनवासी से किमिंद्रेण इंद्र से क्या भय है अल्पवीर्येण वो तनिक भी शक्तिशाली नहीं है कि आपसे लड़ सके ब्रह्मणा और ब्रह्मा से भी तनिक डरने की बात नहीं है वा अथवा तपस्यता जो सदैव ध्यान में तपस्या में मग्न रहते हैं अनुवाद एवं तात्पर्य दिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डिग मारते हैं वे वही अपना पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं जहाँ युद्ध नहीं होता अतएव देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं। जहाँ तक भगवान विष्णु की बात है वो तो केवल योगियों के हृदय में एकांतवास करते हैं और भगवान शिव वो तो जंगल में चले गए और ब्रह्मा वो तो तपस्या ध्यान में लीन रहते हैं। इंद्र वो तो पराक्रम विहीन देवता है अतः महाराज कंस आपको कोई भय नहीं। तात्पर्य कंस के मंत्रियों ने उससे कहा कि बड़े बड़े देवता उससे भय से भाग गए एक जंगल चला गया एक हृदय में भीतर है एक तपस्या में लगा। उन्होंने कहा अतएव आप देवताओं से भयभीत मत हो लड़ने के लिए तैयार हो जा। श्लोक है सुखदेव जी गंगा तट पर महाराज कंस के मंत्रियों जो कंस को सलाह दे रहे हैं उस सलाह की चर्चा कर रहे हैं। कुमंत्रणा कुसंग से कितना बचना चाहिए एक शिक्षा है। इसीलिए राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने कहा है यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादा प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघातम। हे महाराज यत्र जहाँ उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद होता है कथा होती है तत्र वहाँ पर ग्राम्य कथा विघातम जो संसार की एक कुकथा है। जय श्री श्री राधा हरि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। उस पर विघात होता है। भागवत कथा सत्संग में जाते ही एक लाभ होता है कि दुष्कथा कुकथा बंद हो जाए और अनुसेव्यमानम अनुदिनम निषेव्यमानम अगर मुमुक्ष व्यक्ति प्रतिदिन इसका सेवन करे हरि कथा का मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। वासुदेव कृष्ण में मति सती हो जाए जो असती बनकर विषय भोगों में लगी है ऐसी मति शुद्ध हो जाएगी वो मति सती हो जाएगी कृष्ण में अगर हरि कथा का नित्य सेवन किया है। कृष्ण कथा कृष्ण भक्तों की चरित्र इतने पवित्र है कि मनुष्य की चेतना बुद्धि को निर्मल कर देते, विशुद्ध कर देते। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है, मति को भ्रष्ट करने वाली कुकथा। और उससे भी थर्ड क्लास, जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं ये कंस के सारे मंत्री, जिसमें भगवान की, भगवान के विभूति देवताओं की अवहेलना कर रहा। इसके अध्याय में सुखदेव जी अंत में कहते हैं, आयु श्री यशो धर्म लोकानाम आशीष वच महद्यतिक्रम पुंस। भगवान के महान वैष्णव, उनका अतिक्रमण, उनका अपराध, अवहेलना, अनादर करने से आयु नष्ट हो जाए, उनका यश नष्ट हो जाए। सारे देवताओं के या पितरों के, बड़ी लोग के जो आशीर्वाद नष्ट हो जाते, उसका धर्म भी भ्रष्ट हो जाता, अंततः तो वो दुर्गति में चला जाता। सावधान किया गया है भागवत के कई श्लोकों में। इसी बात को रहुगण ने कहा है, शंकर वृषम ब्रह्म कुलाव माना, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, ना हम विशंक सुरराज सुरराज यमश दंडा, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यम के दंड से नहीं डरता, बस किसी वैष्णव ब्राह्मणों के अनादर अपराध से डरता हूँ। आप कहीं तो कपिल तो नहीं है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दंडवत किया रहुगण भरत महाराज। तो सुखदेव जी यहाँ पर नेगेटिव 31% से शिक्षा दे रहा है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का परम श्रेय मंगल चाहता है तो उसे चाहिए कि इन विषयशील कथाओं से दूर रहे, और जहाँ भगवान और उनके भक्तों का अनादर होता हो इन कथाओं से दूर। अगर अपना शेम चाहता है तो भगवत कथा, भगवत भक्तों की कथा, वैष्णवों के संग में रहे, तो मति शुद्ध रहे। देखिए कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो लेकिन वो कुसंग करेगा तो मरेगा, और कितना ही बड़ा मूर्ख हो लेकिन वो भगवत भक्तों के संग में साधु संगति करेगा तो बचेगा, सुधरेगा। ततो दुसंग मुतु सृज्य सत्सु सज्जे तो बुद्धिमान। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण, कर्तव्य है कि वो दुसंग से मुक्त रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो पूछा गया वैष्णवों के क्या आचरण, बड़ा विश्वविख्यात प्रसिद्ध वैष्णव जगत का श्लोक, असत संग त्याग यही वैष्णव है। वैष्णव के विषय में पूछा जाए तो पॉजिटिव बोलना चाहिए, महाप्रभु नेगेटिव शिक्षा दे रहे हैं कि पहले तो ये काम कर असत संग से मुक्त रहो। असत की व्याख्या भी दी गौरांग ने, स्त्री संगी एक कृष्ण भक्त। प्रताप रुद्र के मिलन की प्रार्थना पर चैतन्य महाप्रभु ने एक बड़ा विश्व सुंदर श्लोक कहा, विषयिणाम योषित संग स्त्रीय संग और विषयों का संग हा हंत हंत विष भक्षणो पी असाध, उससे तो अच्छा विष पी लेना, विष पीने से भी उन विषय का संग भयानक है। देखो नीति में एक श्लोक है, विष और विषय, पॉइजन जहर उतना नुकसान नहीं करता जितने विषय नुकसान करते। विष तो पीने पर मारता है और शरीर को मारता है, विषय संस्मरणात् स्मरण करने से आत्मा को दुर्गति में डालता है। विष को आप स्मरण करोगे जहर का, उसको छू लोगे, देख लोगे, मर नहीं जाओगे, पियोगे तब भी बचने के चांस, और मर गया तो शरीर। लेकिन विषय ये शब्द रूप रस ये जो तन्मात्रा है जिसमें बद्ध जीव युगों से सदियों से अलग योनियों में लगा है, इसका स्मरण मात्र से, भगवद गीता का शुरुआत इसी से होता है, संगात संजायते का और विनश्यति पर समाप्त होता है। इसीलिए विवेकी वैष्णव को चाहिए कि साधु संघ के साथ साथ इस कुसंग दुसंग से मुक्त रहे, नहीं तो बचने का बड़ा खतरा है। रूप गोस्वामी ने एक श्लोक भक्तिरसामृत सिंधु में बड़ा सुंदर कहा, वरम उत्तम ज्वाला पंजरात्र व्यवस्थिति, पिंजरा एक कोई हो जो लोहे से सलाखों से बना हो, उत्तम ज्वाला, वो इतना हॉट उसको गर्म दिया जाए, आग बना दिया जाए, उसके अंदर रहना अच्छा है। लेकिन शौरी विमुख जन भगवान श्री कृष्ण का सूर्यवंश में प्रागट्य होना और उसका अख्यात नाम है शौरी, सूर्यवंश में जन्म लिया, तो जो वसुदेव श्री कृष्ण शौरी है उनके जो विमुख जन है उनके संग में रहना अच्छा नहीं है। जलते हुए आग के पिंजरे में रहना अच्छा है, लेकिन इन विमुखों के जन में रहना, इसलिए कई जगह सभी वैष्णव ने इस बात से सावधान किया कि कुसंगति से दुसंगति से बचना चाहिए। कलयुग में रजस तमस माया का ऐसा प्रभाव है और हमारे बद्ध जीव हम जैसों का ऐसा स्वभाव है कि सत्संग की बात का उतना असर नहीं होता जितना असर कुसंग की कुमंत्रणा मिथ्या बात का होता है ना। कोई कितना गुरु कितना उपदेश दे, भगवान ये कह रहे श्लोक दे, फिर भी हमारी निष्ठा नहीं बनती कि ऐसा करे। लेकिन कोई बेकार व्यक्ति फालतू बहुत दिया कि देखो देखो ऐसा है, तो हमारा मन उसी में लगा रहता कि हो सकता है। मतलब उन मिथ्या व्यक्ति का झूठ पर हमारा मन विश्वास करता है नित सहज, और शास्त्र की गुरु की असही बात पर हम लोग अभी विचार करते हैं, चिंता ही करते हैं होगा कि नहीं पता है नहीं, क्या होता है ना, ये अनुभव होता है हम लोगों को कि शास्त्र से साधु सत्य कहता है उस पर हमारी विश्वास निष्ठा का अभाव है, और पता है कि एक नंबर का झूठा है, भक्त नहीं है, फिर भी वो बोलेगा तो हमको लगता है कि हम हमारा मन खींचता है स्वाभाविक। इसीलिए कई कई सत्संग किया है हमने, मान लीजिए 50-100 क्लास सुन लिया, लेकिन 15 मिनट किसी का कुसंग हो जाए तो उस पर पानी चल जाता है, ये देखा गया। एक बार वृंदावन में सार्वभौम प्रभु एक छड़ी बड़ी अच्छी बात कह रहे, बोले हम भक्त लोग सत्संग कितना करते हैं, तो बोले नरसिंह आरती में मंगला में जो चंद वो लगाया जाता है ना, क्या बोलते हैं, 70-60 उतना थोड़ा सा, और कुसंग दिन भर। तो मान लीजिए वो कोई ये 70 वो लगा कर थोड़ा यहाँ पर टच किया और पूरा गटर में पड़ जाए, फिर बाहर निकले तो उसका असर रहेगा कि उसका रहेगा? तो हमारा जो उल्टा सत्संग थोड़ा सा है, कुसंग बहुत चलता रहता है, जबकि मात्रा में ये कम है और गुणवत्ता में प्रभाव में बिल्कुल ज्यादा है, थोड़ा भी कुसंग उसका बड़ा असर होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी की बात पर हम भक्तों को सीरियस विचार करते हैं, असत संग त्याग, इसको त्यागना है। महाराज कंस की यही मूर्खता रही, अज्ञान जड़ता तो है ही है, लेकिन दोस्त भी मित्र भी ऐसे मिले जो अधर्म के पथ पर और भगवत विरोधी। मित्र को हम पहचान नहीं पाते, कृष्ण गीता में कहते सुयदम मैं हूं तुम्हारा मित्र, और उस कृष्ण का प्रतिनिधि करने वाला वैष्णव गुरु जो हमें भक्ति मार्ग की शिक्षा देता है वे है हमारे असली मित्र वैष्णव। लेकिन हम किसको मित्र मानते हैं, जो हमारे संसार में विषयों में इंद्रिय तृप्ति में हमारा हेल्प करे, सुविधा दे, हाँ ये हमारा मित्र है, हम हमारे लिए इतना किया, क्या किया, नरक का रिजर्वेशन किया तुम्हारे। जो भक्त है वो हमें असली शिक्षा दे ले, वो हमें मित्र नहीं ले। कुपत निवारी सुपंत चढ़ावा, भर्तृहरि ने कहा मित्र की परिभाषा है कि जो हमें कुपत से अधर्म से छुड़ाए और धर्म की ओर उन्मुख करे, सुपंत की ओर ले जाए, वो मित्र है। जो हमें नशा कराए, विषयों में लगाए, भोगों में लगाए, भगवत भक्ति से संन्यास दिलवा दे, उसको हम मित्र मानते हैं। संसार में तो यही है ना कि आइए आइए चलिए थोड़ा क्लब में जाके आते हैं, ठीक है ठीक है, उसी को मित्र मान दो, एक नंबर का शत्रु है, पहचान नहीं पाते। रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है, हेतु रहित बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले जगत में दो ही है, एक भगवान राम और दूसरे उनके पास विष्णु और वैष्णव, उसके अलावा जो भी है वो यत्यत किंचित बाह्य रूप से हमें लगता भी है हमारा भला करते हैं लेकिन वो हमारा बुरा करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा भगवत भक्ति के अलावा जो भी करता है, वो चाहे कुछ धर्म भी हो शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम के अंदर, फिर भी वो उनके साथ चीटिंग। कैतव कही आत्मा वंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, चैतन्य महाप्रभु कपट क्या है। कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी कामना वो आत्मा जले कर, फिर उसको पता करे धर्म ही क्यों ना बता। इसीलिए नारद जी ने कहा वेद व्यास जी कि नष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानामलम निरंजन। बेकार है, भगवान विष्णु अच्युत के भाव से वर्जित है, और यद किंचित धर्म ज्ञान भी हो लेकिन न शोभते, उसकी कोई शोभा नहीं। मुख्य वस्तु भगवत भक्ति, भगवत प्रेम अर्जन करना, और वैष्णव के संगति सानिध्य में ही होता है। इस तरह की मूर्खता से बचना है, ये शिक्षा यहाँ से ये शिक्षा है। शास्त्रों के कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिसमें उपादेय शिक्षा होती है कि ऐसे बनना है, ये ग्रहण करना है, और प्रगति में कुछ है शिक्षा होती है कि इससे बचना है, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। मूर्खों का क्या काम होता है कि वो चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं झूठी प्रशंसा। यहाँ देखो कंस की मिथ्या प्रशंसा हो रही, महाराज आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। लो, वो एक्चुअली वो भय में था बेचारा कंस, तो भय में था वो सही था उनके लिए, लेकिन ये लोग चढ़ा रहे। जरासंध को भी ऐसे ही मिले थे इनके ससुर को, कंस के ससुर है जरासंध, वो भी कृष्ण दाऊ ने जब उसको मथुरा में प्रथम बार हरा कर जिंदा छोड़ दिया तो जा रहा था तप करने के लिए हिमालय में, लेकिन कुछ बचे कुछ आ गए। अरे महाराज ऐसे थोड़ी हार जाते हैं, जीवन में हार जीत तो होता रहता है। समय जो थोड़ा साथ नहीं दिया, अभी उन लोगों का समय था, कल हमारा समय अच्छा आएगा। आप लोग एक ट्राई और कीजिए, हम है ना आपके साथ। ऐसे ही जरासंध को चढ़ाया और फिर सैन्य लेकर कर आ गए। यही लोग रहे ना नीच मते चतुराई, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, नीच व्यक्ति का सहन करने पर बुद्धि जाएगी, रहेगी नहीं। यही दशा इन असुरों की हुई। कई कई प्रसंग है। और दूसरी बात यहाँ पर हमें ये विचार करनी है कि ये कह रहे हैं कि विष्णु रह जुसा हरिनाम किम भय। अरे वो विष्णु तो डर के मारे सबके योगियों के हृदय में छुप छुप गया है, उनसे आप डर रहे हो, छुपे खुद डर से छुपा हुआ है, और आप इनसे डर रहे हो महाराज। ये मूर्ख लोग क्या करते हैं कि गुण को भी दोष के रूप में बताते हैं। ये असुर लोग जब चढ़ाते हैं किसी को तो भगवान भगवान की जो महिमा है, प्रभाव है, उनको भी किस रूप में बताते हैं। ये भगवान की सर्वज्ञता, सर्वज्ञता, ये अंतर्यामी, ये समस्त सृष्टि में वो व्याप्त है। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, ये इतना बड़ा ऐश्वर्य है, लेकिन इसको कैसे बता रहे। अरे वो तो डर के भाग छूट गया। बताने का एक ढंग, बात वही होती है लेकिन आप किस तरह प्रस्तुत करो। इसलिए ये मूर्ख लोग, असुर लोग, दुष्ट लोग झूठ को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि लगता है परम सत्य यही है, उसके पास वो है बुद्धि। वो फॉर्मूला हमें भी लेना है, हमें तो परम सत्य को प्रस्तुत करना है, लेकिन उस स्टाइल को सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ कैसे, क्योंकि उसको पता है कि इसको ऐसे ही पानी चढ़ाया जाएगा, जैसे जरासंध को चढ़ाया, इसके इधर भी ये लोग चढ़ा रहे हैं, ऐसे कई प्रमाण चढ़ा रहे थे बलि महाराज को भी। कुछ भौमासुर के विषय में भी यही कथा है, भूमि का पुत्र है, वराह प्रकट हुआ है, क्यों असुर बन गया, दुष्ट संघ के कारण, चक्रवर्ती पार्टी का नवाली, इतना बड़ा असुरत्व तो प्राप्त हो गया, क्योंकि दुष्टों का संग करेगा, असुरों का संग करेगा, बुद्धि हो जाएगी। और वो लोग को चढ़ाने का स्टाइल ही होता है, विष्णु अरे तुम्हारे दादा को मारा, इसको मारा, उसने छल किया, उसके जो गुण है उसको नेगेटिव रूप में बताएंगे। और ये असुरांश, असुरों के अंश आज भी बिखरे पड़े हैं कई मस्तिष्क में मनुष्य को। चार प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गुणों में गुण देखता है, दूसरा होता है दोषों में दोष देखता है, तीसरा होता है दोषों में भी गुण देखता है, लेकिन चौथा दोषों गुणों में भी दोष देखता है। इससे सावधान। वैष्णव की पराकाष्ठा स्थिति यह है कि वो दोष में भी गुण देखे, वो गुण ग्राही होते, सार ग्राही होते हैं, वो हमेशा गुणों का अर्जन करते हैं, उसी को पकड़ते हैं। लेकिन कुछ होते हैं मक्खी की तरह, जहां गंदगी हो वहीं जाते हैं, तो स्वभाव है जहां कचरा गंदी, ऐसे ही जहां दोष है वहीं पर पकड़ते हैं और उसी का दर्शन कराते हैं। देखो चाणक्य ने एक शिक्षा दी है कि साधु वैष्णव पुरुषों की डांट खाना अच्छा है, लेकिन मूर्खों की प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं है। हमारे से नीचे लोग प्रभु जी प्रभु जी तो चढ़ाते ही रहेंगे आपको, और जो वैष्णव गुरु है उसको पता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन हमको वहां जमता नहीं, हमको कहाँ जमता है। हाँ मेरे तो थोड़ा सम्मान मान हार पूजा प्रसाद देता रहे, और वो लोग तो डांटते रहते, लेकिन हमारा भला वैष्णव गुरु की डांट में है। इन मूर्खों की सस्ती प्रशंसा में हमारा कोई भला नहीं, इसको समझना चाहिए। तो उदाहरण देते हैं कि घोड़े की लात खाना अच्छा है, लेकिन गधे पर सवारी नहीं करना चाहिए। कई पेपर में आ जाए कि इस प्रभु जी को उस घोड़े ने लात लगाया, वो वीरता का काम है भाई, तू खा के देख लात पता चले। लेकिन यही न्यूज आ जाए कि वो बैठा था घोड़े पे, अरे गधे पे, तो ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है। गधे पे गधा, दो गधा एक साथ हो गया ये कोई महानता नहीं है। गधे की पीठ पर सवारी की कोई महानता नहीं होती, घोड़े की लात में भी शान है भाई, खाया ना, थोड़ा तो मारता रहता है, खाने वाला भी वीर होना चाहिए तो अच्छा है इस तरह। और महाराज एक बार उदाहरण दे रहे थे कि अगर वैष्णव गुरु साधु जो हमारा हित चाहते हैं, वो यद किंचित हमारे अनाचार दुराचार को इंगित करते हैं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी मंगल गति के लिए, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, उसका डांटना मारना ऐसे ही है जैसे कोई सोना मोहर उसको मार रहा है। आपने कोई गलत काम किया है और किसी के झोले में सोना मोहर पड़ी है, असली प्योर गोल्ड, और उठा उठा के मारो, ए तो आप क्या करोगे, हाँ और एक बार, क्योंकि 30,000 का भाव है, और एक और आने दो, थोड़ा लगता है लेकिन काम हो जाता है ना। तो ऐसे है साधु पुरुषों की डांट, वैष्णव की मार कैसी है, क्योंकि उनके वो क्रोध में भी वो कुछ बोलेंगे ना, शास्त्र से बोलेंगे, भक्ति से बोलेंगे, क्योंकि महान पुरुष यही जो इनपुट जो इनका हुआ है वही क्रोध में भी आउट होगा, वही होगा जिसमें कुछ उपदेश होगा, कुछ शास्त्रों की बात होगी। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी क्रोध में बोल रही थी शर्मिष्ठा को, लेकिन बात बड़ी शास्त्र की बोल रही थी। क्या कह रही हो हमको, विष्णु भी हम ब्राह्मणों की उपासना करते हैं, हम उस ब्राह्मण की कन्या, ऐसे तुम उसको ऐसे क्रोध में बोल रही थी, अब हेल ना अनादर था, लेकिन बात तो शास्त्र की बोल रही थी कि हाँ ब्राह्मण वंदनीय है, पूजनीय है। वैष्णव क्रोध में भी होता है, कोटेशन तो श्लोकों का ही देता है, बोले उसका खुद वो पालन न करे समझे, एक अलग बात होता है, लेकिन उनके उन्होंने जो अर्जन किया है वही आता है। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपनो दोष, गुरु की ठाकुर जी की कृपा तब हुई हमारे ऊपर जब हमें अपना दोष दिखाई दे, किसी और का ही दिखाई दे रहा है और हम तो गुणवान ही दिख दे रहे अपने आप को, तो ये कृपा नहीं है, कुछ गड़बड़। कृपा उस वैष्णव भक्त पर मानी जाती है जिसे अपनी गलती समझ में आ जाए, अपना दोष समझ में आ जाए, उसी से सुधारना चालू हो जाएगा। जब तक माने जाए नहीं सुधरने का प्रश्न ही कहां, अपनी दोष गलती। इसीलिए इस तरह जो कंस के मंत्री संतरी या मित्र है, अगर ऐसे हमारे हैं भगवत विरोधी, भगवत विभूति भक्त विरोधी, इनसे बचना है, इनको दूर से प्रणाम करना है। कहां से? दूर से। और इनकी जो बातें है यद किंचित सुनना ही नहीं है, लेकिन कहीं सुन भी लिए तो जैसे हम कथा में सत्संग में गुरु की बात इस कान से निकाल देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, हमारा उल्टा है, ये हम निकाल, ये गुरु की बात ग्रहण करना, इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन ये हम पर निंदा दोष एक कुकथा उसको हम अंदर ले जाते हैं हृदय में, और जो असली बात होती है शास्त्र की, इसके लिए इकड़न तिकड़न गेला, हमारा टीम बोले इकड़न इकड़न तिकड़न, दोनों कान खोले तो आते जाती रहे, ऐसे तो बहुत ज्ञान कितना अंदर करेंगे सब घूम लेते। लेकिन असलियत क्या है, हम इन बातों को नजरअंदाज कर देना है जो इस तरह की हमारे मति को भ्रष्ट करती। कुकथा मतिग्निम, तीसरे स्कंद 14 अध्याय भागवत में शब्द आया, जो ये कुकथा है हमारे मति को भ्रष्ट करती न करती, और फिर हम कुपथ पर नरक गामी की ओर बन जाते। तो यहाँ पर ये सारी बातें विचारणीय है। ये असुर मूर्ख लोग भगवत गुणानुवाद विभूति के इन महावैश्वर्य को कैसे बता रहे, दोष के रूप में, मिथ्या के रूप में बता रहे। वो तो सबके हृदय में बैठ गया, छुप गया। और वो शिव वनों के साथ, वो तो वन में भाग गया। देखो इनका बोलने का स्टाइल देखो, महाराज किम सेमम भयम। और वो असुर, वो देवता लोग, देवता तो संयुग भी कथन है, वो जहां पर अपना सुरक्षा होता है, क्षेम होता है, वही डिग मारते हैं। कहीं युद्ध में या कहीं बड़े बड़े, आप हम आपके भी पूर्वज, हमारे भी कई असुर महाराजा हुए हैं, उनके सामने ये लोग कई बार भाग गए डर के। ये लोग वहीं जाते हैं जहां कोई नहीं होता, अपना शान स्वभाव दिखाते हैं। इंद्रेण अल्प वीर्येण, इंद्र क्षुद्र, उनके पास क्या वीरता है, क्या बल है, वज्रधारी है, लेकिन बताने का स्टाइल ऐसा। चक्रवर्ती बाद इस पर लिखते हैं कि वनोक्षा शिवम, शिव तो हिमालय में रहते, वनोक्षा कैसे कह रहे हैं, तो पर्वत शिखर पर विराजते गिरीश उनको कहता है, गिरीशेते गिरीश, तो कहते नहीं भगवान शिव भी इलावृत वर्ष में घूमते रहते हैं वन में ही, ये पढ़ लिए होंगे क्योंकि भागवत के नवम स्कंद में कथा है वो, तो ये भी वनोक्षा, वो भी वन में घूमता रहता है। और ब्रह्मा से तो बिल्कुल मत डरिए, क्यों, वो तो कमल पर बैठा बैठा तप करता रहता है, ध्यान करता रहता है। एक तपस्वी है, एक सन्यासी वन में भागा हुआ है, और एक छुप के डर गया है। और इंद्र तो सबसे, इन तीनों में सबसे डाउन पोजिशन उनकी है, उनके पास कोई बल नहीं है, तो जब जाए तो रोता रोता उनके पास जाता है, बचाओ बचाओ। और उसके नीचे वाले जो देवता है, वो तो जहां कोई नहीं होता वहां अपना प्रभाव दिखाते। इसलिए महाराज आप कुछ भी चिंता मत करिए, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए, दूसरे शब्द में कह रहे कि आप मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन यहां चढ़ा रहे कि आप डरने के लिए, डर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। श्री प्रभुपाद लिखते हैं यहां पर कि देवताओं की किसी प्रकार का भयभीत मत हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ महाराज, ये लोग चढ़ा रहे। लेकिन अंदर की बात क्या है, वो मरवा दे जा रहे, लड़ाने में जा, मराने जा रहे, ऐसे ही होते हैं कुछ लोग। इसलिए जिसको शास्त्र से कोई मतलब नहीं, जिसने साधु संग नहीं किया, भगवान के द्वेषी है, विरोधी है, इन सब का संग त्याग। रूप गोस्वामी ने दोनों जगह इस बात को उपदेशामृत में दिया है, संग त्याग सतो वृत्ति सद्वीर भक्ति, जनसंघस्य लौल्यम षड्वीर भक्ति विनश्यति। और नेगेटिव पॉजिटिव, प्रसिद्धि और विनश्यति, दोनों में इस बात को रखा है कि अगर जनसंघ के प्रति जो विषय वासना में डूबे भोगों में, उनके संघ की लौल्य है, तो उनके संघ में तुम्हारी आसक्ति है, लौल्य तो अलग व्याख्या है, तो विनश्यति। और ऐसे व्यक्ति का संघ नहीं त्यागा, त्याग दोगे तो प्रसिद्धि भक्ति में प्रगति होगी। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, शरणागति का यही लक्ष्य। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में आगे कहते हैं, निंदादि शून्य हृदयम तारसंग लब्ध्वा, भजन जो अनन्य भाव से भजन में लगा है, सेवा में लगा है, निंदा आदि दोषों से शून्य जिनका हृदय है, ऐसे वैष्णव का संग करना, सेवा करनी है। ऐसे वैष्णव की संग सेवा से जो शुद्धि होती है, वो हमारे तप साधन से भी नहीं, क्योंकि हमारी तप साधना में बहुत आलस है, अहंकार है, अपराध भी। लेकिन वैष्णव की कृपा का एक अपना बल होता है जो हमें भक्ति में बहुत आगे ले जाता है। इसलिए स्वभाव को सुधारना है, इन दोषों से उन्मुक्त होना है, तो सरल उपाय है साधु संग। सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि साधु पुरुषों की सेवा करे। महत् सेवा द्वारा हो विमुक्त, तमो द्वारम योशिक संगीत, ऋषभ 5:5:2 भागवत। महान पुरुषों की सेवा की बहुत महिमा है और कुसंग की बहुत निंदा है, शास्त्रों में सर्वत्र आपको मिलेगी। इवन प्रहलाद और जड़ भरत ने तो यहाँ तक कहा है, कुछ भी व्रत कर साधन योग आप कुछ भी कर लो, जब तक महान पुरुषों के भगवान के प्रेमी भक्तों की चरण कमल के रज का अभिषेक नहीं करोगे। मही ऐसा पाद रजो किसकिन जना नाम नगरिणी तयावर प्रहलाद कहते, इसी बात कर रहे हो बिना महत्वाद रजो विषय। तो ये गुण बताए गए हैं वैष्णव की संगति के सेवा के, महाप्रभु ने इसको सबसे बड़ा बल कहा। तीन बल भक्ति में यही दिया गया और दुर्गति का महा साधन कुसंग इसकी भी व्याख्या की गई। सीधी बात, सर्वत्र भजनों में सब जगह सत्संग छाड़ी कई नो असत्य विलास ते कारण लागिल तार कर्म बंध फा नरकंदास पाते गौर न पाही न भजन में। उस भजन में कहते कि सत्संग को छोड़ के असत्य में विलास किया, मैं घूमा, उसी समय कर्म की फांसी लग बुद्धि भ्रष्ट हो गए। इसलिए प्रयास पूर्वक इन दुष्टों के इन खलों के संग से बचना। वैष्णव अमानी होता प्रतिष्ठा से दूर रहता, जो भी कुछ हो प्रतिष्ठा करने वाला है, कोई आपकी प्रशंसा करता है समझना चाहिए सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। जबकि वो सही भी हो यत्किंचित वैष्णव के द्वारा होती, लेकिन यही मानना चाहिए कि नहीं ये उनकी महानता है कि हमें महानता दिख रहा है, लेकिन हम लोग वहम में आ जाते कि बोल रहा है तो होगा ही होगा, वो थोड़ी वैष्णव थोड़ी झूठ बोलते, हम है ही महान तभी बोल रहे। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि हम इतना जितना महान है उतना नहीं बोल रहे, तो हम ही बोल रहे ऐसे वहम में हम होते। तो इस ऐसी हमारी प्रगति पर हम ब्रेक कर रहे हैं, उसी पर विघात कर रहे हैं। तो बड़ी ये शिक्षा है, इसको हम पॉजिटिव रूप में, कुछ ज्यादा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया नहीं, आचार्य ने कोई टीका भी इस पर दिया नहीं था। इस पर क्या टीका दे, वो मिथ्या बातें कर रहा है, इसको चढ़ा रहा है, लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव रूप में ले तो ये भगवान के बड़े गुण गा रहे हैं। सारा सदर्क लिया जा सकता है विद्वान वैष्णव द्वारा किस हरि, तो कम से कम भगवान का नाम बोला है, हरि नाम, हरि शब्द उच्चारण लिखा गया है हरि शब्द की महिमा पर। ये दो अक्षर के जो हरि शब्द है हरि, उसका उच्चारण मात्र सारे कर्म और पापों से मुक्त कर देता है। और हरिनाम रहजोशा भगवान की सर्वज्ञता सर्वत्रता की यहाँ पर बात हो रही है, कि वास्तव में एक विष्णु ही भगवान ऐसे है जो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसे विष्णु कहते हैं और सबका मंगल करते हैं, अमंगल हर लेते हैं, सर्व अमंगल हर प्रेम दिया हर आत्मा रामचंद्रेतुम भक्ति हरे इतम बुद्ध गुणों हरि की व्याख्या में गौरांग ने इसको कहा। तो हरि शब्द के हरि नामामृत के हरि नाम के कई महत्व कई बातें, और उनकी सबसे बड़ा वैभव कि सब में वही है हृदय अर्जुन तिष्ठति सर्वज्ञ चाहम गति सन्निविष्ट सब जगह वो। तो इसको इसके भगवान के इस तरह से हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि भगवान ही है। और भगवान शिव वैष्णवा नाम यथाशु वनों के साथ कितने वैरागी है, सबको सब देने वाले महाईश्वर है, लेकिन भगवत भक्ति में इतने रसिक प्रेमी है कि सदा नामामृत में हरि कथामृत में मस्त रहते हैं विषय भोगों से मगर वन में हमेशा, मतलब वने तो सात्विको वास हो उद्धव को भागवत में कहा कृष्ण सत्व में रहना। तो इस तरह से उनकी वैराग्यता या भक्ति की बात हो रही है भगवान शिव। और ब्रह्मा के विषय में सबसे बड़ी बात आचार्य गुरु तपस्या है, तपस्या हमेशा तपस्या में रहते सत्यलोक में, इतने बड़े सृष्टि के मैनेजर है, पूरा देखभाल वही करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भगवत सबसे ज्यादा तपस्या विश्व ब्रह्मांड में किसी ने की है तो ब्रह्मा ने, और बिना देखे भगवान के उन शब्द को सुनकर कर ली तप तप शब्द सुना दिया लग गए तपस्या। हमको प्रैक्टिकल कहा जाता है तपो दिव्यम, इनको केवल बताया ब्रह्मा जी कितना बड़ा आयु है उनका, कितनी बड़ी उनकी तपस्या है। भगवान की विभूति है गुणावतार है और सभी असुरों को वरदान दे, तप उसका उसने किया तो ब्रह्मा तपस्या था, एक रीति में गुण है ना, विचार के लिए तपस्या में लगे है, एक वैरागी है बस, और एक की वहां था, इस तरह हमें लेना चाहिए। और इंद्र ना अल्प वीर्य है ना, इंद्र का वीर्य अल्प है तो कौन सा गुण बता रहे हो? हाँ, एक रूप में गुण है क्योंकि वो देवता है, विभूति है, सब कुछ है, लेकिन इन तीनों के सामने तो अल्प ही है इनका वीर्य। कंस के सामने या असुरों के सामने कोई अल्प नहीं है, बहुत है, लेकिन स्थान अनुसार बात की जाए, सही रूप के अर्थ में लेना हो तो ले सकते। तो गुण इस तरह हम विचार कर सकते हैं भागवत के इन शब्दों पर। असुर अपनी बुद्धि से कुछ भी पाखंड बोले, जिसने कृष्ण बहिर्मुक्ता की मदिरा पी है वो कुछ भी बोलता है, लेकिन जो प्रमाद में हो उसके वचन प्रमाण नहीं माने जाते। समझ आती है बात? जो है ना विप्रलिप्सा भ्रम प्रमाद कर्ण पाटल, उनके वचनों का क्या महत्व? हम वेदों के भगवान के उन वचनों का महत्व, जो पौरुष है। तो ये तो कुछ लोग है कलयुग में, तो यही भरे पड़े जो यही बकते रहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन उसकी बातों का कोई सार। और मूर्ख लोग जिनके अल्प भाग्य अल्प पुण्य है, इन कुसंगति में फंस कर दुर्गति को निमंत्रण दे। इसलिए विवेकी वैष्णव को चाहिए कि इन कुसंग से, इन मिथ्या वेद विरुद्ध जो चर्चा है, विवाद है, उनसे मुक्त रहे। भगवत गुणानुवाद, भगवत कथानुवाद, भक्त चरित्र को सुनते रहे, इसी में मंगल, इसी में कल्याण। नैमिषारण्य के साधु 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करने वाले भृगुवंश शौनक ने निवेदन किया प्रारंभ में ही सुत गोस्वामी से कि तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रय। हे महाभाग्यवान सुत जी, आप उस कथाओं का वर्णन किए जिसमें भगवान कृष्ण के पावन यश चरित्र, अथवा नहीं तो तद बदाम भोज मकरंद लिहाम सताम, उस कृष्ण के चरण कमल में जो भ्रमर बन के उस पराग रज को रस को लेते सताम वैष्णवानाम, उसके चरित्र को कहिए। विष्णु गाथा गाइए कृष्ण कथा या भगवत गाथा, किम अन्य सद आलापे आयुर्वेद पर, अन्य व्यर्थ चर्चा करके व्यर्थ जीवन को क्यों हम बिगाए? तो भक्त भगवान की कथा के अलावा जो भी है सब असत है। असत मतलब मिथ्या, जो भूतकाल में ना हो, भविष्य में न रहने वाला हो, वर्तमान में भले कुछ विद्यमान दिखाए दे। सत्य का परिभाषा यही है कि वो तीनों काल में सर्वत्र सत्य हो, और वो कुछ है तो भगवान, उनका धाम, उनकी लीला, उनके भक्त, उनकी की हुई भक्ति, ये सत्य है। और उसके अलावा यथा दृष्टम तथा नष्टम, जो आप देख रहे हो सब नष्ट होने वाला, चाहे कुछ भी हो, गाड़ी बंगला शरीर कुछ भी, वो भूतकाल में नहीं था, भविष्य में नहीं रहे। मैन्युफैक्चर डेट के साथ एक्सपायरी डेट लग जाता, लेकिन कभी कभी छपा नहीं होता। हमारा भी लगा हुआ है एक्सपायरी, लेकिन छापा नहीं है इधर, कहीं टाइम तुम मरोगे, इसलिए हम मौज में हैं। तो दवा में छपा होता है कि ये टाइम में जाएगा, तो हमारा भी डेट डेट फिक्स है। बर्थडे तो हम हैप्पी बर्थडे लोग कह देते हैं, लेकिन हमारा श्वास के अनुसार हमारा जीवन अवधि फिक्स है, हमको पता नहीं। हम जी रहे हैं उतना सत्य, उतना ही सत्य हम मर रहे, उसी समय हम मर। इसीलिए समय को व्यर्थ नहीं करना। भावा लक्षण में रूप गोस्वामी ने कहा अव्यर्थ काल लक्षण, विवेकी वैष्णव अपने सकाल को व्यर्थ नहीं। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा लॉस, हानि क्या है? जो क्षण जो समय भगवत स्मरण के बिना चला जाए तो सबसे बड़ा जीव का नुकसान। ये क्षणों में उत्तम श्लोक बार गया, इसके पॉजिटिव बात कहा गया है भागवत, आयु रहती भाई कौन, आयु की बेकार व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि सूर्य उगते ही आयु नष्ट कर रहा। सहानि महत छिद्रम, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा दुख दोष यही है कि वासुदेवम न चिंतये, वासुदेव का चिंतन स्मरण, सारे वेद शास्त्रों का सार सततम स्मृत। इसीलिए इन सारे श्लोकों को, संतों के, वैष्णवों के, महाजनों के इन वक्तव्य को, भगवद गीता के महावाक्य जो भगवान के मुख से निकले हैं, भगवतम श्रीमद भागवतम भगवान की दिव्य मधुर मंगलमय पवित्र लीला, भाव बंधन है काटने वाली, त्रिताप नष्ट करने वाली, रस प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली, जो शुक्र मुखाद अमृत है, शुक्र मुख से निकला, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को गाना, और इसके अलावा जो भी है सब बकवास, उससे दूर रहना। रूप गोस्वामी ने इसको प्रजल्प कहा, इससे मुक्त होना। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हम मेरे जैसे जो मुख से अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन आप सभी वैष्णव है, साधक है, हम केवल स्मरण करा रहे हैं। तो बस इसी आशीर्वाद की कामना से कि आप भक्त लोग कृपा करें कि जीवन में इस तरह का भक्ति और स्थिति अवस्था आए, और ये जो यहाँ पर चल रहा है इस ऐसे से बचे। तो धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप भक्त लोग आए, पधारे, सुने, बस लाखों बातें हैं, करोड़ों बातें हैं, लेकिन एक हिंदी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है, लाखन की लाख कहूँ करोड़ों की एक बात, जीवन जो सुधारना चाहो तो हरि नाम ली। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। बहुत प्रकार के ज्ञान बान की बातों से भी सार यही है, हरे नाम एवं केवल। इसी से वक्तव्य को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कुछ गड़बड़ हो तो सुधारी। गुड़ाकेश प्रभु जी, थैंक यू। कमलोचन प्रभु, आप सभी वैष्णव हो, इस पर क्या कहा जाए। ऐसे तो मैं देखा टीका में कुछ नहीं, प्रभुपाद जी दो लाइन इसी का अनुवाद किए, जो अनुवाद किए वही तात्पर्य करती थी। लेकिन जो भी भगवत वाक्य स्मरण में आया हम कहे बताइए प्रभु जी।
भगवान भी कभी कभी इस प्रकार का प्रवचन कर देते हैं ना, लोग को चलाने वाला।
हाँ, इसीलिए बहुत अच्छी बात है। कई कई ऐसी बातें हैं कि भगवत वाक्य भी, महाभारत में भगवान उवाच है, या भागवत में भी कई कई कुछ वाक्य है जो इस तरह के होते हैं। इसीलिए जो गीता में है, भक्तो जमे सखा चेत, जो भगवान का भक्त होता है, जो भक्ति करता है, वो भगवान के वक्तव्य के साथ, अनुवाद के साथ उसके तात्पर्य को समझता है कि भगवान ये बोल रहे हैं लेकिन इनका ये अर्थ नहीं होता। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान के कुछ प्रवचन वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं प्रथम स्कंध में, अर्जुन को भगवान ने कहा आतताई, ये आतताई है और आतताई का वध करना चाहिए, और मेरी आज्ञा है तो मार दो इसको, फिर भी अर्जुन ने नहीं माना। भगवान अर्जुन गीता में, गीता पहले हो चुकी है ना, महाभारत के अंतिम क्या कहा था, करिष्ये वचनम, तो किया भी, तत्व उत्तिष्ठ धर्म उठाया भी। अब वही भगवान यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मारो इस विश्वामा को, आदता ही, और मैं कह रहा हूं फिर भी अर्जुन ने नहीं मारा। मतलब क्या है कि अर्जुन भगवान के भक्त है, समर्पित है, इसलिए वो समझ रहे हैं कि भगवान भले हमको बोल रहे लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं है, ये समझ रहे हैं। इसी तरह कई उदाहरण, गोपियों को भगवान ने कहा लौट जाओ यहां से, पादो पदम न चलस्ता उपाद मूला, एक भी गोपी वापस नहीं गई। भगवान ने कहा भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन ध्यान द्रास पंचायत में, कि मेरे नाम का कीर्तन कर रहा, घर में रहकर भजन करना, संडे संडे आ जाना मंदिर पर, सुबह सुबह चले जाना, हो गया। ऐसी को भक्ति कहते, ऐसे ही लोग करते हैं, लेकिन गोपियां नहीं गई। हम लोग में से होता था, ठीक है प्रभु जी धन्यवाद, वो सीधा साथ अनुवाद समझ लीजिए उसी तरह के। तो बड़ी अच्छी बात है प्रभु जी, आप ही इसको क्लियर करिए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि भगवान वाक्य भी कुछ ऐसे है, वेद भी भगवान के ही वाक्य माने जाते हैं, उसमें कई तरह के ऐसे प्रवचन होते हैं। इसलिए गीता में भगवान एक जगह कहते हैं कि जो योगी है, मेरा भजन किया है, समर्पित मुझे हुआ है, भक्ति किया है, जो छठक रूप में पूछा अर्जुन ने, तो कहते शब्द ब्रह्माति वर्तते पूर्व तेने और पूर्व अभ्यास है ना, अगर वो भजन किया है, भक्ति किया है, तो वेद वाक्य जो ये भगवत वाक्य भी कुछ है, वो शब्द ब्रह्म से भी उनकी बुद्धि परे चले जाती है, वैष्णव कृपा के कारण, वैष्णव सेवा के, उन भक्ति समर्पण के कारण। और तब वो कंक्लूड ऐसे समझता है कि भगवान या वैष्णव गुरु हमसे क्या चाहते, वो बोल भी रहे लेकिन इसका मर्म ये नहीं है। लेकिन इस अवस्था के लिए यही श्लोक हम दे सकते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी बार बार देते थे, कि भगवत गीता रहस्य ज्ञान, भगवत आदेश को समझने के लिए भक्तों चमे सखाते, परंपरा में आया हुआ वैष्णव जो भगवान को समर्पित है, भक्त है, वही भगवान के इन वेदों के तात्पर्य को सार समझता है। नहीं तो इसी वेद वाक्य कर्म कांड या अन्य अन्य में व्यक्ति फंस जाता, देखा गया। तो आप क्या कहना चाहते कि ठीक है इस तरह होता ही है, भगवत वाक्य भी ऐसे होते हैं, तो हमें कैसे लेना चाहिए।
किया लेकिन मैं ये बताता हूँ जब लोग के लिए मसाला भगवान प्रकृति है
हाँ उस प्रकार की प्रकृति
जैसे परि महाराज को बोले अरे तुम्हारे स्कूल में कितने गंभीर हुए भगवान विष्णु भी बात करके सुनते
हाँ उन जैसे वैष्णव की देवताओं की परंपरा ऐसे इन लोगों को भी
परंपरा
इनकी भी चलती है। भगवान जी सही याद दिलाया स्मरण धन्यवाद। वो वामन देव बड़ा सुंदर कहते हैं एक्चुअली उनके दादा को मारा है ये विष्णु और वही है आए हैं तो क्या कह रहे हैं कि विष्णु तुम्हारे दादा इतने वीर थे कि ढूंढते थे कोई है मर्द लड़ने वाला कोई ऐसा हुआ नहीं। मानो बलि कहे तर्क दे सकती बात ठीक है लिखे तर्क दे कि अरे क्या बात चढ़ा रहे हो ब्राह्मण देवता मेरे दादा को मार दिया विष्णु और आप कह रहे हो कि मेरे दादा महान थे। अरे नहीं मार दिया छोड़ो लेकिन तुम्हारे दादा ने जो एक मारा था ना वो विष्णु अभी भी याद रखता है। ये एक मारा लेकिन इतना सॉलिड मारा अभी देखो वो बलि कह रहा है कि हमारे दादा को तो मार दिया और आप कह रहे हैं कि हमारे दादा बलवान है वीर विष्णु ने मार दिया उसका तो बोले भले मार दिया हो उसका टाइम था मार दिया लेकिन तुम्हारे दादा जो लड़े और उसने विष्णु को जो चोट पहुंचाई ना छाती में आज भी विष्णु को कभी कभी याद आ जाता है कि मारा बड़े वीर एक मारा लेकिन इस तरह चढ़ाते भगवान खुद क्या दानी बने ये बने तो ऐसे भगवत वाक्य है और उनके लिए यही मसाला है असुरों के लिए। इस तरह महाभारत में भी कुछ कुछ वाक्य है और गीता में भी लेकिन ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया और भगवान ने कहा है ना मानुषिन तने मूढ़ोयम ना भी जानाती नहीं समझ पा रही। ओके अच्छी बात है और कुछ यस प्रभु जी
हरे कृष्ण यहाँ पर जितने भी सुरों की जो सभा बैठी है जहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि महादेव जंगल में बैठे और विष्णु हृदय में बैठे तो ये हालांकि ये नास्तिक प्रवचन है
अभी नहीं मानने वाले से मानने वाले असुरों को देखो भागवत में हम पढ़ते हैं इतिहास में कि असुर किसको कहा जाता है तो वो भगवान की भक्ति नहीं करते उसकी समर्थन में वो मानते तो है ये जो नहीं मानने वाले उससे भी बड़े असुर कम से कम वो भगवान के रूप को तो मानते भी वो है उनसे उनका जमता नहीं है उनसे वो वैर रखते हैं अलग बात है ये मानते ही नहीं तो ये कलयुग के असुर इससे भी बड़े हैं क्योंकि ये देवता लोग कम से कम ये असुर लोग कम से कम देख रहे भले उनके दोष गुण को दोष देख रहे हैं उनसे द्वेष उनको नहीं पूछ रहे नहीं समर्पित हो रहे हैं लेकिन कम से कम वो पता है कि विष्णु है वो ऐसा करते हैं तो है। और आजकल के लोग तो मूर्खता दो मूर्खता बड़ी प्रसिद्ध है असुरों की कलयुगी असुरों की जो मानव आकार में रहते हैं एक पहली कि भगवान कृष्ण को वो साधारण मनुष्य मानते और उससे बड़ी दूसरी साधारण मनुष्य को भगवान मान लेते जो भगवान है उसको सब वो तो महान पुरुष थे बस। अभी किसुमु में प्रभु जी और दीपक आए थे तो हमारे भक्त ने क्या लिया उसने कहा कि एक मूर्ख था तो प्रश्न उत्तर था तो कहा कि अगर जीव आत्मा 366 डिग्री ज्ञान बढ़ा लेना वो भगवान हो जाता है। तो हमारा भगत उसमें बैठा था वो खड़ा वो सबको माइक दिया जाता है प्रश्न उसने पूछा ये 366 डिग्री क्या होता है ये बताइए पहले और दूसरा ये बताइए कि आज तक विश्व ब्रह्मांड में कौन भगवान दूसरा बना कोई कोई मनुष्य बना। तो उसने कहा कृष्ण बने राम बने बोले वो तो पहले से थे इतना घुमा घुमा के वो बोल रहा था लेकिन उत्तर दे नहीं पाया क्योंकि कोई इतिहास नहीं कि वो भगवान बना भगवान कोई मैन्युफैक्चर आइटम तो है नहीं 15-20 मिनट इधर उधर बोला, सारी जनता 300-250-300 लोग बैठे थे उस सनातन मंदिर में, गुड़ा के सब जानते, और वहाँ की बड़ी पर्सनालिटी जो उनका प्रोग्राम कराते हैं, अब सबको समझ में तो आ गया कि ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि इनका प्रश्न बिल्कुल क्लियर था कि एक भी बताओ हमको जो भगवान बना है। और इसने सीधा माइक में बोल दिया, वो अपना रमेश, वो बोल दिया कि क्यों इस तरह लोगों को चीटिंग कर रहे हो, गीता रामायण भागवत से विरुद्ध बोल के आत्मा भगवान बन जाता है, इस तरह लोगों को आप क्यों चीटिंग कर रहे हो, इस क्लियर बोल दिया। और वो इसका पूरा चेहरा उड़ गया जो उत्तर दे रहा था, जनता को भी समझ में आ गया, लेकिन वो कुछ उत्तर नहीं दे पाया, घुमा घुमा के बोल रहा था। तो फिर हमारे दूसरे जी ने कहा कि आप बैठ जाओ अभी छोड़ो। तो एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि हमने भी सुना है कि भगवान एक है, संभवामी युगे, गीता में कहते कि मैं आता रहता हूँ, आप इनका उत्तर नहीं दे रहे तो घुमा क्यों रहे हो, उसने भी बोला। तो उसके पारे पूरे प्रोग्राम को पानी फेर दिया ये। दूसरा ही प्रश्न इसका था। तो रमेश जो एक भक्त है हमारा, किस रूम में रहता, वो हमसे कहा कि प्रभु जी हम चाहते नहीं थे इस तरह, लेकिन वो इस तरह बोल दिया तो हमने पूछ लिया, तो बोल नहीं पाया तो फिर हम चढ़ गए बात पर। तो दो काम अच्छा हुआ मुझे बोलता है, बोले मेरे को किसी मुंह का एक कुत्ता भी नहीं जानता था, आज बड़े बड़े लोग जानते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। और दूसरा काम ये हो गया कि सब लोग जान गए कि भगवान कृष्ण है और ये बेबस है। तो उनके ही जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो भी हम मिले हमको, हमको कह रहे थे कि तुम्हारा हरे कृष्ण वाला तो उनका निकाल दिया सब। मैं बोला भी हरे कृष्ण वाला सब है ही ऐसे, क्या प्रभुपाद ने ऐसा फिलोसॉफी दिया है कि एक छोटा बच्चा भी सन्यासी को परास्त कर सकता है बाहर के, क्योंकि वो शास्त्र का प्रमाण देके बोलेगा, सच में बोलेगा, व्यास ने बोला है, वाल्मीकि ने बोला, इधर बोला, और ये कुछ भी बकवास करते हैं। वो इतना फालतू बोला, वो बोलता है कि कृष्ण ने किया क्या, अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया ना, मैं भी तो वही दे रहा हूँ, क्या फर्क है। तो रमेश का तुम्हारा चेहरा देखो पहले, ये यही फर्क है। वो सीधा बोलता है कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो क्या किया, मैं भी तो यही दे रहा हूँ, तुम लोग तो क्या फर्क है, अब बोलो। और मूर्ख जनता ताली पीट रही, लेकिन सबकी आंखें खोल दी, कई लोग समझ भले, क्योंकि जनता है ना ऐसे होता है तो पता है, वो पूछ नहीं पाते, वो बोल भी नहीं पाते, लेकिन उसको डिसीजन आ जाता है कि ये बोगस है ये सही, इतने तो समझ में आता है ना वार्तालाप से, तो ये बड़ा लाभ है। एनीवे, लेकिन आपका मैं इस तरह स्मरण आया तो बताया, इस तरह घटना हुई याद आ गया इसलिए। लेकिन ये लोग बड़े असुर जो भगवान के सुंदर श्री विग्रह पर ही विघात करते हैं, भगवान को खुद निराकार बताते है ही नहीं और अपना ही मूर्ति पुजवा लेते बनाते, ये गुरु लोग उनका आकार हो जाता है। और पूरी सृष्टि बनाने वाला सबसे सुंदर जो राम बन के लीला की, कृष्ण बन के लीला की, और मूर्ख लोग, और आधार उसी भागवत का लेते हैं, बोर्ड वही लगाते हैं, भागवत यही राम माँ कथा, और फिर उस पर उसी राम को तो आकार, तो कथा किसकी कर रहा है तो क्यों जा रहा है, लेकिन उसी का कथा कहेंगे और जनता उसी के नाम पे इकट्ठा करेंगे, और जनता खुद इतना मंदा सुमंद मती है, पढ़ते नहीं तो फिर एसेंस नहीं समझता। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्रांति किया है, लोगों की भ्रांति मिटा दिया, असली शांति दिया, कृष्ण दिया, सुयदम वो है ना, शांति पृच्छति, सार्थक कर दिया प्रभुपाद ने। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम बद्धवद्यो, यही रिलेशन, यही विप्लव किया है इसको, कि भगवान कृष्ण की गाथा कथा नाम को सुना, भले यद किंचित अलंकार की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, वक्तव्य की दृष्टि से क्रमबद्ध हो, पहले बाद में बोल, लेकिन वो शुद्ध होने के कारण, भक्त होने के कारण जनता के हृदय में हो जाता, और जनता की विषय वासना काम ईर्ष्या सब छूटती है और भगवान के प्रेमी बनते हैं। और बड़े बड़े व्याकरणी वेदांती सब घूमते रहते हैं निराकार निराकार करते हुए। भाव की महत्ता है, चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा उस दक्षिण भारत की यात्रा में उस ब्राह्मण को, कि तुम गीता का सार तुम समझे, भले तुम श्लोक ठीक नहीं बोल रहे, त्रुटि है, लेकिन वो कहा कि शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, मैं मेरे गुरु की आज्ञा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। महाप्रभु ने कहा तुम क्या देखते हो गीता में, अर्जुन रथ प्रभु है या रजुधर, मैं देखता हूं कि जिनकी रथ यात्रा शिव ब्रह्मा बड़े बड़े देवता निकालते हैं, वे द्वारिकाधीश अपने भगत का रथ चला रहे हैं, जिसका रथ निकल ब्रह्मांड में जिससे बड़ी किसकी सवारी नहीं, और अर्जुन रथ प्रभु है या रजुधर सारथी बन गए, ये देखते ही भगवान का जो करुणा है, स्वभाव है अपने भक्तों के प्रति, हमारे आंखों से अश्रु बह जाते। चैतन्य महाप्रभु ने अलंकार में आलिंगन में भर लिया कि वास्तव में गीता सार तुम, क्योंकि गीता का सार है समामेतम शरण मद भक्तो भव, और तुम हो और पंडित सब रह गए, तो महत्व भक्ति का है, समर्पण का है, और वो गीता का अनपढ़ भी भगवत सार समझ जाता है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हो, और बिना भक्ति के बिना समर्पण के वेद पढ़ते हुए भी भगवान के बात को भी कोटेशन देते वो लोग नहीं कर पाते, समर्पण नहीं समझ पाते। इसीलिए भक्तो चने सखा चेती, श्रील प्रभुपाद भूमिका में लिखते हैं भगवत गीता की कि ये भगवान की भक्त समर्पण भक्त दिए बिना जो गीता को समझना चाहता है वो मधु हनी से भरा बोतल बंद है, बोतल कभी वो बाहर से चाट रहा है, उसको कोई मधु का टेस्ट मिलेगा बिना भक्त बने। इसलिए फर्स्ट पहली शरत है भक्त बने समर्पण, तब भक्तिया माम भी जाने, तब भगवत ज्ञान हम समझ सकते। धन्यवाद। 15-20 मिनट में आपका ज्यादा लीजिए, प्रसाद से विरह रखा इसके लिए क्षमा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।